नेशंस की कॉन्फ्रेंस में, और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने बल्कि एक रैली करवाई थी, बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई थी, पूरे बीजेपी के लोग इकट्ठे हुए थे टेक्सास में। तो व्हाट डू यू थिंक के हाउ वुड हिज अराइवल और अब वो किसको एंडोर्स करके जाएंगे?
देखिए यहाँ से
हाँ
उनके एंडोर्समेंट से ज्यादा जो है वो विद इन मतलब कि इन दोनों का बाई पार्टी जो सिस्टम है ना, इसके अपने चैलेंजेस ऐसे हैं कि अगर वो एंडोर्स भी करके जाते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देके जाते हैं, इंडियन कम्युनिटी इज इक्वली डिवाइडेड। और इससे भी बड़ी जो बात है वो ये कि इस वक्त मुझे जो नजर आ रहा है कि कनाडा में भी और अमेरिका में भी इलेक्शंस में मुसलमान जो हैं ये अपना सारा वेट खो रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ट्रंप है, उसने पिछली दफा क्या किया, मुसलमानों की आमद पे पाबंदियां लगाई, मुस्लिम कंट्री से आने पर
भी गजब से कोई कमाल तो नहीं कर रहे।
अच्छा ये भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये मतलब क्या गजा पर भी दोनों के व्यू प्वाइंट में सिर्फ अल्फाज का फर्क है।
सर जी दोनों के आप क्या फरमाएंगे
जी
कि मैंने बल्कि न्यूज को फॉलो नहीं किया कि व्लादिमीर पुतिन ने ट्रेवल करना था और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर भी है कंट्री और इसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए। चार्ज क्या है? बच्चों के ऊपर जुल्म करना। आपको याद होगा कि बच्चे मरवा दिए। नो बच्चों का क्या था कि यूक्रेन के बच्चों को दे टुक देम टू रशिया। ठीक, आज अगर आप डेमोक्रेट्स की बात करते हैं ये चार्जेस, गजा के जब अस्पतालों के बीच में बॉम्ब, गजा के बीच में मेजॉरिटी बच्चों की मरी है, स्कूल के स्कूल खत्म हो गए हैं, बच्चों की एक नस्ल मिट के रह गई,
यूएन ऑफिसेज भी बर्बाद कर दिए।
ठीक है, करें, बड़ों की बात अलग है, मैं एक इक्वल चार्जेस की बात कर रही हूँ। यूक्रेन और रशिया की बात है तो उस पे चार्जेस लगता है कि उसको अरेस्ट किया जाए क्रिमिनल कोर्ट में। क्या है कि बच्चों को यूक्रेन से दे टुक देम टू वहां हॉस्पिटल में भी अटैक हुआ था, एक हुआ था गजा में, हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बच जाती है, बेशुमार बच्चा मारा गया है
जी बिल्कुल,
पैदा होते बच्चों को, इंक्यूबेटर्स के बीच में बच्चों को मारा गया, दैट इज ऑन द हैंड्स ऑफ दिस बाइडन इंतजामिया।
ठीक है भैया,
कि इन्होंने असला भी प्रोवाइड किया, इन्होंने कहा कि तुम अस्ते को यूज भी कर सकते हो, तो डू यू थिंक के दोज अमेरिकन, ये जो मिशिगन के मुसलमान है, डू यू थिंक दे विल वोट फॉर दिस?
नहीं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ये समझ रहे हैं कि ट्रंप के रूप में इनके लिए कोई फैसिलिटेशन है, आई डोंट सी दैट ईदर।
मगर ट्रंप के दौर में लड़ाई नहीं थी वो तो नेटो को खत्म करना चाहता था।
लेकिन एक बात है कि यहाँ पर जो कुछ उन चार सालों में जो यहाँ के मुसलमानों ने मतलब कि जो जिस किस्म की सस्पिशन गुजारी है आफ्टर 9/11, पहली दफा फिर झटका लगा, हम वापस आ रहे थे अपनी जगह पर एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ अमेरिका और कैनेडा वट एवर, वो जो है उसकी वजह फिर पर्दा उठता है और हम उसी सस्पिशन में मुब्तला कर दिए जाते हैं। दैट आई यू नो आई पॉइंट आउट कि दोनों तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, और इसमें ये नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी की ये जितनी तंजीमें हैं, आई विल से ओपनली केयर समेत, इन्होंने अपने लिए कोई जगह या मुकाम या वेट बनाने में कोई काम नहीं दिखाया।
बहुत शुक्रिया सर, इन्होंने कोई काम दिखाया नहीं। थैंक यू वेरी मच, यू सेड वेरी गुड। आज मैं जिक्र करना चाहती हूँ, आज की एक न्यूज है कि पाकिस्तान की दो मजहबी जमातों के रहनुमाओं पर नीदरलैंड में इस्लाम मुखालिफ लीडर के कत्ल पर उकसाने का। खुदा दे और नेक बंदे हो तुसी, ना मुल्कां च बैठे हुए हो तुसी, नई शराब पीनी ना पियो, तुम आपने नई गलत काम करना ना करें, बट डोंट ये आप किसी को किसी के कत्ल पे नहीं उकसा सकते। दिस इज द क्राइम हियर इन कैनेडा। और अगर हमने यहां पर भी वही कवानीन लेके आने हैं जो हमारे अपने मुल्कों में है कि हर कानून को अपनी गिरफ्त में, यहां पे तो जब तक कोई बंदा एक होता है चार्ज होना और एक होता है प्रूवन गिल्टी, जब तक प्रूवन गिल्टी नहीं होता आप उसको गिल्टी भी नहीं कह सकते। तो मतलब वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। बहुत शुक्रिया।
और फिर देखें आप इसमें जो है वारिफा, एक और बात है, आप इन ममालिक में आके आबाद हुए, आपको पहले से पता है कि इन ममालिक का अपना डोमिनेंट कल्चर क्या है, जुबान क्या है, रूल्स क्या हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद में हाउ कैन आई अज्यूम कि यहां आके और मैं जनाब अली अपने जो फिलॉसफी है उसका मैं मतलब आप अपने करेक्टर से अपनी फिलॉसफी के लिए अपील करें। आप ये नहीं है कि डंडा हाथ में पकड़ के आपको मैं ये कहूं कि नहीं जी आप मेरी फिलॉसफी को माने एंड दिस इज द मोस्ट सुपीरियर फिलॉसफी, ये तो इस्लाम में भी नहीं गुंजाइश किसी जगह, मॉरली फिजिकली एंड इवन यू नो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर, ये उसूल ही नहीं है। उसूल यही है कि जितने मजाहब आए हैं, क्रिश्चियनिटी ले लें, जुडाइज्म ले लें, शुरू से वो मॉरेलिटी की बेसिस पर आए हैं और मॉरेलिटी की बेसिस पर उन्होंने कन्विंस किया अपने फॉलोअर्स को, ठीक है। तो जब आप मॉरेलिटी की बेसिस पर आप आए हैं और आप दूसरे मुल्क में आए, अपने यहां अगर आपका प्री डोमिनेंट कल्चर है फाइन, यू कैन गो एंड यू कैन डिमांड दैट, लेकिन अब यहां आने के बाद, वरना मैं आपको बताऊं कि यही दोनों ममालिक थे जहां पर जितने लोग तबलीगी जमात वगैरह के आते थे, मैकडोनल्ड के बाहर हाईवे पे देखें तो उनकी नमाजें होती थी, मसल्ले बिछते थे, सब कुछ था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग हंकी डोरी। फिर क्या हुआ, वो कौन सी चीजें हमने की हैं कि जिसकी वजह से जो आम यहां का सिटीजन है, गोरा हो या काला हो, कोई भी हो, जो यहां का ओरिजिनल सिटीजन है, वो हमें इस शुबे की निगाह से क्यों देखे कि जिसके नाम में मोहम्मद हो वो जनाब अली, या जिसके नाम में अब्दुल लिखा हुआ हो उसको जो है वो एक ब्रांड कर दिया जाए कि ये है। फिर दूसरी बात ये है कि हमने ये भी तो काम नहीं किया ना कि भाई टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, किसी का फेथ है या किसी का अमल है। अगर अमल एक्शन है तो फिर उसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए, और उस डेफिनेशन में चाहे अमेरिकन आए, चाहे कैनेडियन कोई बंदा आए, चाहे 8 नस्लों से वो शहरी है यहां का, उसके एक्शन से ये तय होना चाहिए कि ही इज ए पीस लवर और ही इज ए टेररिस्ट। यहां ये जो प्राइमा फेसी तय कर लिया गया है ना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। और फिर आप इस मुल्क में आए हैं तो यू केम विद ऑल योर च्वाइसेज एंड विद योर ऑप्शन,
यस।
और फिर आपके मजहब की जो है तबलीग क्या है कि दूसरों को कन्विंस अगर करना है अपने इखलाक से करो,
किरदार,
अपने किरदार से करो। तो हम किरदार और ये सब चीजें छोड़ देते हैं, हम आपस में भी क्या करते हैं, आपके सर पर दुपट्टा अगर मैंने देख लिया तो मैंने कहा जनाब माशाल्लाह ये तो बिल्कुल
पाबंदे
सोमो सलाद है, और आप मैंने ये इसको शेरवानी पहने में देख लिया तो कह दिया माशाल्लाह क्या अच्छा मुसलमान है। इस तरह से
कपड़े मजहब के नाम पे बाज़ोकात लोग लूटते भी जाते हैं,
माजूद के साथ काफी कुछ हो रहा है।
कैनेडा में एक फ्रॉड हुआ, 1.3 मिलियन डॉलर उस बंदे का लूटा, और वो क्या करते थे उसका, उसको आपके नदीम भाई ने किस पुर्द अल्टीमेटली मैंने वो केस किया था। अच्छा। क्योंकि मैं तो बड़ी चीखता हूँ, मैं तो चली गई, तो माजिद भाई कराची से तल्लुक रखते हैं, पंजाब और कराची वाले अंदर फर्क है।
अच्छा की
तो मैं गई जाके बंदे पूरी स्टोरी ली, तो वापस आए गड्डी जाके माजिद भाई कहते मैं नहीं दोबारा यहाँ पे आऊंगा, आपको नहीं पता यहाँ कितने कैमरे लगे हुए होंगे, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा अच्छा कैमरे लगे होंगे तो हम कोई चोरी करके आए हैं वहां से, अभी बंदा नहीं गया। फिर मैंने नदीम भाई की सुपुर्द किया, मैं तो खैर दो दफा गई थी, फिर मैंने नदीम भाई की सुपुर्द किया और अल्टीमेटली वो बंदे को जनाब ही कुडंट फाइल हिज फोर्थ बैंकरप्सी। मिसिसागा न्यूज ने ये रिपोर्ट दी भी
जी।
और पैसे मिले कि नहीं मिले वो ला मालिक है, मतलब 1.3 मिलियन का फ्रॉड था। और वो क्या करता था, काबा शरीफ में जाके ना हमेशा काबे के साथ तस्वीरें उतार के इसको भेजा करता था। फिर एक और आदमी को मैं जानती हूँ उसको, वो कहता है, उससे कहा कि आपको जुमे की नमाज भी देखोगे, हाँ मैं फजर भी पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह फजर भी, नहीं नहीं मैं तजद भी पढ़ता हूँ। अच्छा अभी आप उमरा भी करके आए थे, कहते नहीं मैंने हज भी किया हुआ। तो भाई इस पे लोग एनीवेज।
वैसे आप बताओ, अभी जो आप पुतिन साहब की बात कर रही थी ना, तो वो ही जस्ट लास्ट 5 मिनट्स लैंडेड टू मंगोलिया
लैंड, मंगोलिया उन्होंने जाना था। मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है और ज़ेलेंस्की भी ये कह रहे हैं और सारे ये कह रहे हैं गैरस, मगर उनकी टीम जो है वो बहुत मुतमईन है, वो कहते हैं कि नो दे अल्लाह खैर रखे, सो ही लैंडेड देयर। बहुत शुक्रिया। मेरा सर आपसे एक सवाल है, हम हिपोक्रेट हैं और हमें हिपोक्रेट्स अच्छे लगते हैं
जी।
कमला हैरिस इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट। गजा की जंग के हवाले से कहा जाता है कि बाइडेन की हमदर्दियां, बाइडेन के लिए हमदर्दियां कम हो गई थी, क्योंकि बाइडन को लोग समझते कि उनका मौकफ जो है वो विद नतन्याहू
है, उनका सारा एक्शन वही था।
अभी कमला हैरिस आपको स्क्रीन पे कुछ और नजर आ रहा है, मगर अगर बिहाइंड से देखा जाए तो असले की ओपन इजाजत भी दे दी गई है, एवरीथिंग इज बीन डन।
बिल्कुल सही कहा, आप सही कह रहे हैं।
तो शी इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेट।
इसी बात पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ये जो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, इसमें मुसलमानों की आबादी जो है और मुसलमान तंजीमें जो हैं उनका सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि दे कैन नॉट डिसाइड कि दे शुड गो विद द डेमोक्रेट्स और दे शुड गो विद द।
नहीं जी, मुझे बहुत सा पता चला है कि वो थर्ड पार्टी की तरह जन आजाद उम्मीदवार होगी, ना तेरे बट्टे च बैठेंगे ना तेरे पलड़े च बैठेंगे, आजाद ना जाएंगे।
तो फिर नोटिस कौन लेगा उनकी?
आइए सर, मैं पाकिस्तान लेके जाना चाहती हूँ, पाकिस्तान लेके जाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मैंने एलन मस्क का ये बयान खुद से पढ़ा था। मुझे मालूम है कि हम जब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो बाज़ अमीर लोग ये कहते हैं कि बच्चे पैदा करना सिर्फ अमीर के लिए, गरीब को बच्चे बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड देम, दे कैन नॉट एजुकेट देम। पाकिस्तान में अमीर लोगों का रवैया कुछ और है। ये जो कारसास का एक वाकया हुआ था, वो जो खातून थी और एक नहीं बेशुमार वाकयात है, अगर आप पीछे की तरफ मुड़ के जरा देखते हैं तो आपको बेशुमार वाकयात नजर आएंगे जिसमें उनकी बेल भी हो गई, अगर बेल नहीं हुई तो उनको जवानों ने हॉस्पिटल में भी चले गए, सब कुछ हुआ। गरीब को जीने का हक नहीं है, यानी गरीब की मौत के ऊपर गम करने का भी हक नहीं। आप शराब का भी उसमें जिक्र है, उसमें आइस का भी जिक्र है, मगर अब अल्फाज को तरोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उसकी आंखों को अगर औरत की को देखें, जिस दिन द फर्स्ट डे एक्सीडेंट हुआ था, जो लोग आइस का नशा करते हैं ना उनकी आंखों के नीचे के हल्के बता देते हैं। अब वो कहते हैं कि कराची कारसाज वाकये में मुलजमा पर एक और मुकदमा, इसकी दफात में शराब का जिक्र है, आइस का नहीं। और क्या आप फरमाएंगे, क्या वजह है कि पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी मखदूश हो गई है?
उसकी वजह यह है ना कि सोसाइटी में किसी ने यह काम नहीं किया कि ग्रास रूट को मिडिल क्लास के साथ और मिडिल क्लास को अपर मिडिल जो इलीट क्लास है उसके साथ कोई राबते की कड़ियां नहीं किसी ने बनने दी। नतीजा उसका यह है कि जो आपके यहां घरेलू मुलाजिम है ना, आपकी बहुत सजी हुई टेबल के ऊपर खाना रखता है, आपके कपड़ों की इस्त्री वो करता है, आपके घर की एक एक चीज को वो उठाता है, और आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि वो नंगे पांव बाहर भी गया था, नंगे पांव अंदर भी आया है, उन्हीं हाथों के साथ आपकी चीजें, आपकी हाइजीन जितनी है उसको वो इफेक्ट कर रहा है, वो हम मतलब कि उसको नहीं हम गिनते। ड्राइवर सामने होता है गाड़ी का, पीछे मियां बीवी बैठे हुए डिसएग्री कर रहे होते हैं, लड़ाइयां कर रहे होते हैं, वो सुन रहा होता है, वो समझते हैं कि गाड़ी खुद चल रही है, इसके काम नहीं है, इसका वजूद नहीं है। इसी तरह से मिडिल क्लास जो है वो बेचारी इससे स्ट्रगल में है कि ऊपर हम मेहनत करके चले जाएं। नतीजा उसका यह है कि बच्चों को पढ़ाने के ये सारी जो तरबियतें हैं मिडिल क्लास की, जो एथिक्स है उसमें आप देखेंगे ये सारी चीजें मौजूद हैं। इलीट जो है उसको पैसे गिनने से फुर्सत नहीं है, और वो जो इलीट के बेशतर लोग जो हैं, हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां चैरिटी सबसे ज्यादा दी जाती है, उसके बावजूद तो हम अल्लाह के सामने जाके वो मतलब के चंद देगे पका के कुछ किसी न किसी को दे देते हैं, और वो मतलब कि हम कहते हैं हमने फीड किया और हमने काम कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी जो कहा है कि सब इंसानों को आप बराबर माने, वो नहीं है। नतीजा उसका यह है कि आपका सोशल फैब्रिक जो है, जब उसके अंदर वही क्लासेस हैं जो दूसरे किसी मजहब में है, तो फिर आप वहां पर इंसाफ कहां से लाएंगे? इंसाफ नहीं है। लाहौर में जो एक वाकया हुआ था जिसमें वो छह आदमी उसने मतलब के मार दिए थे, यंग बच्चे ने, यंग लोगों को एक के हाथ में गाड़ी उस वक्त दी गई है जबकि लीगली उनको अलाउड नहीं है कि लाइसेंस हो, और उसके बाद वो ये नहीं, जब वो गाड़ी जाके कहीं मारते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, इंसानी जान का ज़िया होता है, तो दूसरा गरीब की अगर इंसानी जान जाती है तो कहते हैं फिर क्या जीत करके दे के हम मतलब कवर कर लेते हैं। इस लड़की के मामले में जो कराची का आपने कहा, उसने ये कहा जी हम 68 लाख जो है वो दीद दे देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, यानी इतना रिमोर्स भी नहीं है। और यहां की अदालत को आप देखें तो वो ये देखती है कि अच्छा यू आर अक्यूज फॉर दैट एंड इवन इफ यू हैव प्लेड द गिल्टी दे यू शुड शो सम रिमोर्स फॉर डूइंग व्हाटएवर यू डिड, कि रिमोर्स तो हो ना, एक एहसास है
नदामत हो, अपनी गलती का एहसास।
हाँ, हमारे यहाँ तो गाड़ी चलाने वाला अगर मतमोबाइल आदमी है, उसने तीन आदमी मार दिए तो कहता फेल क्यों है, ठीक है ना। तो उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ी क्लास है जो मतलब है कि जिसके सारे वसाइल है, जिनको रस्ते में मिलता है, वो पुलिस वाले को जो जो चौक के अंदर खड़ा हुआ आपको डायरेक्ट कर रहा होता है, उसको गाली देकर निकलते हैं उनके बच्चे।
सर, पाकिस्तान में अगर आप आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट, अभी IMF के कर्जे मिलने में भी थोड़ी सी ताखीर हो गई है, सुने कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, तीन चार सवाल इकट्ठे मिलके आ रहे हैं, जब आपकी हुकूमत के अरकान खर्च करते हैं तो वो ऐसा शाह खर्ची के साथ खर्च करते हैं। हमारा मंडे लास्ट फ्राइडे का प्रोग्राम था कि डी चौक को ब्लॉक किया, इन्होंने कंटेनर्स पे कंटेनर्स रखे, बिकॉज इट्स अ माफिया।
जी जी जी,
कंटेनर्स वालों को पैसा मिलता है, कंटेनर्स लाने वालों का भत्ता है इसके बीच में, और ये भत्ता ऊपर तक
ऊपर तक।
मेरा आज इंटरव्यू गया है हमारे वो जो हैं सनाउल्ला चौहान के साथ, सनाउल्ला बलोच के साथ मेरा आज का इंटरव्यू गया, मुझे बड़ा गम हुआ। वो कहने को जो भी कहे, देखिए जी, अपनी गलती अगर कहीं 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 गलतियां हुई हैं तो आपको अपनी गलती का एतराफ करना चाहिए, लाजमी करना
चाहिए।
मुझे ये बताएं कि शाह खर्ची अंदर अंदर इश्तहार अखबारों को बहुत बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, मुल्क के पास पैसा कोई नहीं है, आपकी इम्पोर्ट आपकी एक्सपोर्ट आपकी सिफर हुई हुई है, वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सारे मांगने के लिए निकले हुए हैं, तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, व्हाट आर दे डूइंग, आर यू सेटिस्फाइड व्हाट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज डूइंग?
देखिए, इसमें जो है ना आरिफा, आप पॉलिटिशियन ले लें, ब्यूरोक्रेट ले लें, अपना यूनिफॉर्म लोग ले लें, जो ऊपर की क्लास में चला जाए, जब तक तो ये कैप्टन मेजर वगैरह इस ओहदे पर रहते हैं ना, तो यू फाइंड देम डिफरेंट। जब ब्रिगेडियर से ऊपर के ओहदे पे गए तो फिर इनके उन्हीं के मिजाज, बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ जनरल दो तरह के आर्मी में, बहुत सारे वो जो हुआ अक्यूज ऑफ करप्शन, या फिर वो सिर्फ मुसल्ला पकड़ते हैं, अपने रिटायर होते हैं, अपने गांव में जाके नमाजें पढ़ते
हैं। आप ये नहीं है, बड़े शरीफ भी बेचारे,
वही मैं क्या है कि जनाब वो भी लोग हैं, वो जनरल भी हैं कि जो कुछ नहीं करते, नेकी के साथ जाते हैं और जाके नमाजें अपने पढ़ते हैं, और अब मतलब
के जनरल दुरानी के बारे में इतना कुछ लिख दिया उन्होंने, यहाँ तक लिखा कि मैं उनको एक एक ग्लास देता जाता था, वो उगलते जाते थे, बेचारे ने पाकिस्तान छड़िया नहीं
जी,
ताड़े बतेरे जनरल थे, मतलब इधरों हुकूमत खत्म हुई, उधरों या बाहर किसी मुल्क चले जाते ने, अमरीका आ गए या उरे परे आ गए, जनरल पाशा ने भी सपोर्ट की थी सी, वो ताड़ा वो केड़ा बंदा जी ने गोली मारती थी, क्या नाम था उसका, गाफ उसके नाम में आता था, वो यार वही वाला जनरल पाशा जिसके लिए दिन दिन बंदिया ने गोली मारी थी, ब्लैक वाटर वाला।
अच्छा अच्छा,
तो बेचारा दुरानी साहब तो जनरल दुरानी तो नहीं मार खा गए, अगर पाकिस्तान भी न छोड़ा वहीं पे रह गए, मेरे शरीफ जनरल भी है, सारे बुरे नहीं
नहीं, अब्दुल वहीद काकड़ है, पाकिस्तान में रहा है वो, बाहर नहीं निकले, लेकिन बहुत सारे, अब ये आपको मैं बताऊं ना कि यहाँ पर अनवार काकड़ से निगरा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया उन्हें, ठीक है ना, केयरटेकर।
सर धीले का आदमी नहीं था, आपको पता है,
सुन तो ले,
आप उनकी जरा बैकग्राउंड आज बताएं, अनवार का आपको जरूर
पता
होगा।
मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरा उनके साथ मुचाचा जिसको कहते हैं वो रहा, क्योंकि वो UN तशरीफ लाए, तो मैं खैर पहले मिले तो वो जैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मियां साहब आपके साथ बैठना है फला फला है, लेकिन जब उन्हें ब्रीफ किया गया कि ये सुनता किसी की नहीं है, सवाल वही करता जो इसके दिमाग में आता है, तो फिर वो बचने लगे। तो आखिरी वक्त में जो है मैंने कहा कि वो जो अब आपने नशिस्त करनी थी क्या हुआ, कह लगे नहीं वो ये हो गया, क्योंकि इस दौरान में मैं उनकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था, केयर टेकर गवर्नमेंट का यूनाइटेड नेशन में क्या काम है, उसको तो मुल्क में बैठ के जो है इंतखाबात कराने का जो काम है वो करना चाहिए।
अभी भी सर जो गरम का स्कैंडल उसके सर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक ठाक स्कैंडल उसके सर पे पड़ा हुआ
है, ये देखिए आपके केयर टेकर है, 90 डेज कानून के मुताबिक उसकी लिमिट है, लेकिन अमलन क्या हो रहा है, वो यहाँ आते हैं और यहाँ आके जिस तरह से उनके ऊपर पैसे खर्च किए गए हैं,
ही मेड सो गुड मनी ड्यूरिंग हिज दैट पीरियड, ये जो गंदम का स्कैंडल आप लोगों के सामने ही होगा,
इतना बड़ा
ये जो कंटेनर्स का है, ये भी एक सर माफिया है, इसमें भी जो एजेंसीज हैं और ये वो पैसा बना रहे हैं, बट मुल्क इज इन द क्या हो गया ख्वाजा आसिफ हमारे जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने मांस तो सारा गिद्धों ने नोच लिया, अब ये हड्डियां नोच रहे हैं। डिड यू हैव अ चांस टू लिसन टू दैट?
जी जी जी, मैंने सुना, लेकिन बात ये है कि इन हड्डियों को नोचवाने में हमारा भी तो रोल है ना
सर। वो जो ये कह रहे थे वो इनका भी जिक्र कर रहे थे, फलाई मखलूक का भी जिक्र कर रहे थे, और वो जिक्र कर रहे थे पॉलिटिशियंस का भी। तो पार्टी तो उन्हीं की हुकूमत कर रही है।
जी, आप सही कह रही हैं, और ये बात नहीं है, बात तो ये है कि अभी तक मेरे नजदीक मियां शहबाज शरीफ वजीर आला के खोल से बाहर नहीं निकल सके। ही हैज बीन प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, लेकिन उनका जो अप्रोच है और जो सारी चीजें हैं वो मतलब है कि वो उसका स्टाइल उनका वही है।
सर काकड़ साहब को भी यही एजेंडा के लिए हायर किया गया था, विच ही डिड, ही मेड मनी एंड दे आर क्वाइट।
दैट्स इट।
तो क्या नजर आता है आपको, ये गवर्नमेंट चलेगी पाकिस्तान में?
पाकिस्तान इस वक्त आरिफा सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, पाकिस्तान इज इन वेरी वेरी डीप क्राइसिस। और मुल्क हमारा है, हम यहां रहें कहीं भी रहें, मट्टी से जो है एक लगाव वो एक नेचुरल है। आपके अंदर भी होगा, जमाल साहब में भी होगा, हम भी वो कराची से हो सकते हैं, आप साहिवाल से हो सकती हैं, मैं लाहौर से,
वी आर ऑल पाकिस्तानी,
लेकिन वो एक मट्टी का जो है ना वो आपके अंदर एक एहसास है। ये जो अब लीडरशिप जो है, बदकिस्मती की बात है, अल्लाह ताला ने मुझे इनमें से कौन सा रूलर है कि जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ऑल राइट देन, मुशर्रफ साहब हुए, जियाउलहक हुए, जियाउलहक के जमाने में मैं नापसंदीदा आदमी था, फाइन ठीक है। भुट्टो साहब हुए, अल्लाह का शुक्र है मैं भुट्टो साहब के साथ व्हाइट हाउस जाने का जो है एक क्रेडिट समझता हूं अपने लिए यंग एज के अंदर। कहने का मतलब ये सारी चीजें हैं, मगर इनमें से सबको, सब में से अगर किसी को आप देखें तो सब के सब, चाहे वो आपके गिलानी साहब हो पीपल पार्टी के, चाहे वो मतलब के नून लीग के लोग हों, कोई भी हो, वो जो ऊपर की लीडरशिप है वो जब आती है तो वो अपने आप को एक खुदाई मखलूक समझ कर आती। क्यों? कि दे बिलोंग टू एन इलीट क्लास, अफ्लुएंट क्लास, प्रिविलेज क्लास। एक दफा मुशर्रफ साहब से वो उनकी अच्छाइयां जो हैं वो ये हैं कि वो बेबाकी से बात आपकी क्रिटिसाइज आप करें वो सुन लेते थे, माथे पे बल भी आते थे, एसजीएस भी अपने आप को कहते थे। तो मैंने मतलब कि उस पर छेड़ दिया उनको कि जनाब, मैं मलिया लोधी भी खड़ी थी, मैंने कहा जनाब आप एसजीएस के कमांडो कहलाते हैं, आपने तो 8 मिनट के टेलीफोन पर हथियार डाल दिए। तो एकदम पलटे, कहने क्या मतलब? मैंने कहा जी वो कोलिन पावल की जो आपकी 8 मिनट की कॉल थी, आपने उसमें कहा कि ठीक है जी हमने मतलब कि हमें कुछ नहीं, बार्गेन भी नहीं चाहिए, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा इजिप्ट ने बार्गेन की, $20 बिलियन ले गए, इतना ही हमारे लिए था। कह लगे आपको कैसे पता? मैंने कहा जी वो जो कोलिन पावल साहब इराक के सिलसिले में आते थे तो यहां वो वजीर खारजा भी रहे ना, तो वो जहां बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी वी हैड द सेम बार्गेन फॉर यू गाइज एंड बट जो इफ योर प्रेजिडेंट सेज कि भाई नहीं हमने तो कशकोल भी तोड़ा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी आर बी गोइंग टू बी विद यू। तो कहने लगा कि इफ आई एम गेटिंग समथिंग फ्री विल आई पे 2 सेंट्स फॉर दैट। और बात सही थी। तो कहने लगे कि नहीं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तो मैंने उनसे ये एक बात कही, मैंने कहा जनाब मुझे कोई खुशफहमी नहीं, और उसकी वजह कि मैं किसी बहुत बड़े वडेरे या जिम्मेदार का बेटा नहीं हूं कि जो एक कौमी असम्बली का हल्का होता है जहां से मैं एमएलए बनता फिर मैं सोचता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूंगा, मैं फैसले करूंगा तो क्या करूंगा, वो मैं हूं नहीं। आपकी तरह मिडिल क्लास का आदमी हूं, आप नाजमाबाद में जो है किरमिच की गेंद से क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए, हमने भी किरमिच की गेंद ही तोड़ी है, लेकिन फर्क आपका मेरा यह है कि आप फौज में भर्ती हुए और आप जो है वो खिताब लिया है तो यू आर इन पावर। मैंने कहा मेरी में ये कैपेसिटी भी नहीं, मैंने फौज में भी नहीं अप्लाई किया। तो बाद में उन्होंने शाम को बैठ के एंजॉय किया, उसने कहा मियां ये तुम्हारी जो बात है ना ये मेरे यहां आके लगी है और अच्छी लगी है मुझे। तो मैंने कहा ये देखे ना, इलीट क्लास में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी जो करप्शन है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है कि जो आदमी नीचे वर्कर है किसी पार्टी का वो सबसे पहले दाव ये लगता है यार कॉन्ट्रैक्ट ले लूं, ठेके ले लूं, सड़क बना दूं, ये कर दूं, मकान बना दूं, और उसके अंदर बिल जो है वो मतलब है कि 6 गुना ज्यादा हो। पाकिस्तान में सड़कें बनाने का जो मतलब खर्चा होता है आप कभी कन्वर्ट कीजिएगा उसको डॉलर में, जितने का टेंडर होता है, तो वो क्या करते? तो कहने का मतलब ये है ना कि हमारे यहाँ ये स्ट्रगल है।
बहुत शुक्रिया। क्विकली आप बेशतर इसके कि हम आगे की तरफ चलें, क्विकली आप बताइएगा कि ये क्या नजर आता है आपको, पाकिस्तान में ज्यादती हुई 40 अब आप मैं छोड़ूंगी और आप ही कंक्लूड करेंगे फॉर्म 45-47। जाहिर आप कितना बेवकूफ कौम को बनाएंगे, कितना बेवकूफ बनाएंगे
यार इस कौम के। जितने इलेक्शन हुए हैं ना अयूब खान के पीरियड से लेकर आज तक, कोई एक इलेक्शन बेईमानी के बगैर मुझे दिखा दो। अयूब खान के
सर जी बेईमानी हुई होगी, हूं मैं ताडे अगो कप चुके कमा मैं नहीं चुकया। एक हुंदी है बेईमानी में थलो ही कोई तार
नहीं सर, जहां जिना की बहन को जो है गद्दार पाकिस्तान कह दिया जाए, बानी पाकिस्तान की बहन को अयूब खान के जमाने में हुआ।
नोबडी
आज उनका पोता जो है वो कहता है जी जमहूरियत और इंसानी हकूक हमें चाहिए।
उनके पोते ने उमर अयूब ने, ये जितने आई पी वीज हैं सारे उमर अयूब ने ही। मैं देखिए जी मेरे लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है।
एग्जैक्टली
उमर अयूब ने क्यू के काफ लीग के साथ भी रहा, नून लीग के साथ भी रहा, पता नहीं पीपल्स पार्टी नाल भी धक्का धुक्का खादा होगा। हूं ना आई पी पी इसको रो रहे हैं ना आज महंगी है, इसी ने साइन किए थे जब ये
मुस्लिम लीग नून के,
ठीक है। तो मैं तो पॉलिटिशियंस को, मुझे लोग पीपल डोंट लाइक मी बिकॉज रादर देन सेइंग एनीबडी एल्स आई से द फर्स्ट योर पॉलिटिशियंस आर बार्गेन।
अगर आपको आप मुझे इजाजत दें ना तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आप ये देखें कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो तब रास है, जो जागीरदार है, जो पॉलिटिशियन है, इन तीनों का कभी आपस में डिस्कनेक्ट मुझे दिखा दें। ये तीनों एक ही शादी के चक्कर बैठे
सर, ये इनकी शादियां एक जगह भी नहीं। आज मैं सनाउल्ला बलोच से बात हो रही थी और मैंने हमेशा कहा कि इंडिया ने अपना जागीरदाराना निजाम खत्म किया था, इंडिया ने ये स्टेट्स के जो बड़े वडेरे थे इनको तोड़ा था, सूबे ज्यादा बनाए थे। आज सनाउल्ला बलोच कहते हैं कि बलोचिस्तान में देयर वाज अ टाइम इट वाज ऑन द टेबल
जी
कि ये ट्राइबल सिस्टम है, ये जो सरदारी निजाम है इसको तोड़ा जाए। मगर आपका जो अंदर बैठा हुआ लोग है ना वही टूटने नहीं देना चाहते।
नहीं वो टूटने नहीं देना चाहते। आप ये देखिए कि मुशर्रफ साहब ने नारा लगाया था कि भुक्ती के बारे में कि मैं तो वहां से वार करूंगा, इसे पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। आज हम भुक्ती के कत्ल के सारे असरात जो है वो भुगत रहे हैं। ये सारी जो मूवमेंट है इससे पहले कहाँ की। दूसरी बात
अच्छा, मगर मैं भुक्ती का, मैं अब प्रोग्राम को उतना लंबा लेके भी नहीं जाना चाहती,
नहीं,
मगर भुक्ती के बारे में जो आज मैंने एक और स्टेट पढ़ी थी, ये भुक्ती के सब ट्राइब्स भी हैं और ये जिस जगह पे मारा गया था एल शेप जगह थी, ये सब ट्राइब भी इसमें इन्वॉल्व था। आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने सब ट्राइब को इन्वॉल्व किया था। ब्राह्म दाग भुक्ती जिसको इंडिया ने अपनी सिटीजनशिप का कहा, उसने सिटीजनशिप अप्लाई भी किया, यूएई में रहता है, ही इज हिज ग्रैंड सन। यानी भुक्ती वो शख्स था जिसने हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट की थी। कहीं उसने अगर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया होगा तो इन डेमोक्रेसी एवरीबडी हैज द राइट। अभी दीजिए इजाजत, नदीम का नंबर जरूर नोट कर दीजिएगा। नदीम अजीमिया साहब के बेटे हैं, आरबीसी में काम करते हैं, हलाल इन्वेस्टमेंट के, उन्हीं को दिखाओ भाई, हलाल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यस हलाल इन्वेस्टमेंट सूद के बगैर इन कैनेडा आरबीसी के थ्रू। एंड आरबीसी क्विकली बताइए आप, क्विकली अपना एक बार फिर से तारफ करा दीजिए
मेरे बारे में।
नदीम
जी, मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ आरबीसी डोमिनियन सिक्योरिटीज के साथ। हमारा ऑफिस है रॉबर्ट स्पेक पार्कवे मिसिसागा में, और मैं ये इंडस्ट्री में तकरीबन कुछ 25 इयर्स,
यू हैव लिव्ड योर लाइफ
इन दिस इंडस्ट्री फॉर 25 इयर्स।
लिव लॉन्ग बेटा, लिव लॉन्ग। नदीम का मैं नंबर आपको दिए देती हूँ, इनका नंबर है यू कैन फाइंड इट ऑन द स्क्रीन एज वेल, 4378702980। नदीम मियां इनका नाम है, CFA CIM, व्हाट CIM स्टैंड फॉर?
CIM चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट।
सो चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, CIM किया हुआ है, आरबीसी के साथ हैं, हलाल इन्वेस्टिंग कनाडा में आप रब्ता कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
थैंक यू।
मैं फिर दोनों को आज तो शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं हूँ, कल परसों करूंगा। बेहद शुक्रिया,
आई लव यू, बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट गेस्ट विल बी हियर वेरी सून।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM, यंगस्टाउन टोरंटो। Pakistan paise bhejna ab hua aasan. Use LimPay for international transfers. Canada se Pakistan paise minton mein pahunchte hain. Barah rast jisko aap bhejna chahe. Behtareen exchange rate aur paise pahunche minton mein. Download from Google Play or Apple Store. Code Pakistan istemal karne pe aapko mile $10 ka cashback. Apne phone se barah rast bank account mein paise bhejna shuru kare minton mein aur bina kisi fees ke. LimPay.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
10 ਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਫੋਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾਈ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ
ਟੀਮ 4 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ 99 ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ 2024 ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ੋ ਸੈਟਰਡੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦ ਥੀਏਟਰ ਐਟ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਸੀਨੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੁੱਡਵਾਈਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵੁੱਡਵਾਈਨ ਰੇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਕਮਲ ਹੀਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ .ca ਤੇ ਜਾਓ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਟੀਮ 4 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 905-793-1234
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुड़ सिखाओ ना
भाई बात सादा सी है हमारे पास दो गाड़ियां और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੋ ontario.ca/builds ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो नो अपॉइंटमेंट नीडेड ड्राइव थ्रू फैसिलिटी वन स्टॉप शॉप अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी क्विक ट्रक यू 519-622-0660 quicktrucklube.com
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 सीआईबीसी ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें cibc.com/cashpickup पर जाएं शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू सीआईबीसी एम्बिशंस मेड रियल
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241 647-769-0241
Radio Sansora Music, Music, Music
विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है. कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में पे इंतहा वैरायटी है. बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे. आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल. विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट.
सावे नासरी वेलकम बैक अगेन. एंड साहब अब मैं ले चलता हूँ आपको कहाँ पर, एक खूबसूरत गीत की तरफ. आसिम अजहर एंड मोमिना मुस्तहसिन की आवाज में कोप स्टूडियो में फिल्माया गया हुआ ये गीत समाप्त में 4166201778 हमारा फोन नंबर है.
जमाने ने तेरी मेरी कहानियां कर दे कोई नवाज से करम मेहरबानियां. ये हर साथ के देखे दुनिया हम जैसा कोई दीवाना भी नहीं. कर दे कोई क्या करे
तेरा वो प्यार
कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी है। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792।
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशी आमदीद कहना चाहती हूँ जनाब। दो एक स्पॉन्सर्स का पैगाम और फिर एक मुलाकात की तरफ लेके बढ़ेंगे। जनाब करमतुल्लाह गौरी साहब तशरीफ फरमा है, एवरी मंडे को आपसे मुलाकात होती है। सर का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ ले आते हैं, एहसान मंद हूँ अपने कीमती वक्त में से, और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती वक्त ही सबसे ज्यादा कीमती है। हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया विलेज टेस्ट ने, बेहतरीन लजीज जायकेदार खाने के लिए विलेज टेस्ट को मौका दीजिएगा। खुला होता है ओपन 7 days a week, आप जाइए, छोटी बड़ी पार्टीज करनी है, आप एक दफा वीकेंड पे विजिट करके देखें, आप यकीन कीजिएगा दिल धरने की जगह नहीं होती। मग क्यों, किस लिए? इसलिए कि खाना ताजा होता है, खाना बहुत मजेदार होता है। हलाल की तलाश में अगर हम होते हैं तो जीटीए का सबसे बड़ा बफे विलेज टेस्ट पे सर्व होता है। 9052373663 उनका नंबर है। हलाल से मुझे ख्याल आया कि मुझे लॉबस्टर खाना बहुत अच्छा लगता है। मुश्किल होता है लॉबस्टर खाना, यानी उसकी टेक्निक है, अगर आपको टेक्निक आती हो तो। रेड लॉबस्टर जब बंद होने जा रहा था तो मुझे बड़ा दुख भी था कि रेड लॉबस्टर बंद होने जा रहा है। मुझे याद है कि यहाँ का एक रेस्टोरेंट है, वो भी रेड लॉबस्टर किया करते थे। अभी 4-5 दिन पहले मैं कॉस्को गई तो वहां रेड लॉबस्टर्स पड़े हुए थे, तो आई थॉट के आई विल बाय, इतने महंगे भी नहीं थे। मेरा ख्याल है $35 का एक था या $42 का एक था, आप जाइएगा जाके देख लीजिएगा। तो बेटा मेरा मेरे साथ था, आई सेड मॉम दिस इज नॉट हलाल। मैंने उसका मुंह देखा, मैंने कहा व्हाट इज इन इट नॉट टू बी हलाल, इट इज हलाल। कहता तुमको पता होगा कि जो मछली है, अगर मछली पानी से बाहर उसकी डेथ होती है तो आप खा सकते हैं बींग अ मुस्लिम, मगर अगर पानी में डेथ होती है तो नहीं। तो रेड लॉबस्टर को पकाने के लिए, ये जो तुम खरीदना जा रही हो ना, इसके लिए होता है कि जिंदा लॉबस्टर को उबलते पानी में डाला जाता है, जिससे उसका कलर ग्रीन से रेड में चेंज होता है। तो वेयर इट डाइज इन वाटर, सो मॉम दिस इज नॉट हलाल, यू नो व्हाट इट मेड मी टू थिंक अबाउट। मैं तेरे नाल ही सो राइट, आई नेवर न्यू अबाउट इट, आई हैड इट मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। And he said, "Mom, you cannot have it because red lobster जो है, lobster जो है, उसको पकाने के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता था जब वो चूस के उसकी टांग वाला हिस्सा खाया करते होते थे, बहुत मजे का, मगज मगज की तरह से। But he said, no, जब इसको पकाने के लिए आपको इसको उबलते पानी में डालना पड़ता है, and then you have to put it alive. और जब आप लाइव डालते हैं तो this is sea or water life which dies in water. This mean it is not halal. लो कर लो बात, कल मुक्की ऐसे ही मुक्की। मेरे साथ जनाब करमतुल्लाह गौरी साहब तशरीफ फरमा है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम आरफा, वाह अल्लाह का शुक्र है, आज का दिन बहुत अहम है मेरे लिए। आज ही के दिन 24 बरस पहले मैंने कनाडा में कदम रखा था एज लैंडेड इमिग्रेंट। आज 24 साल हो गए पूरे, और मैं समझता हूँ कि
दो सितंबर
को 40
24 years हुए आपकी कनाडा के अराइवल में।
और मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो मुस्तनद साहिब फैसले किए हैं उनमें ये एक फैसला है,
बेहतरीन फैसला,
बेहतरीन फैसला। इसलिए कि मैं बल्कि बहुत दिलचस्प वाकया है कि मेरे बेटे ने मुझे स्पॉन्सर किया जब मैं तुर्की में सफीर था। तो अनकरा में जो कनाडा का सफीर था वो क्वेबेक का था, उसने मुझे फोन किया, उसने कहा करामतुल्ला तुम कनाडा क्यों जा रहे हो, क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि जहां उसका नाम था, जहां तू एक ऐसे मुल्क का शहरी है, बाशिंदा है, जहां हर चीज कायदे करीने से होती है। मैं बदकिस्मती से एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखता हूं जहां कोई शायद ही कोई चीज कानून और कायदे से होती हो। तो मैं ये समझता हूं कि मैं अब रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाला हूं, डेढ़ बरस मेरा रह गया है, तो मैं एक ऐसे मुल्क में नहीं रह सकता जहां की फजा में फिक्र और सोच पर पाबंदी हो।
बड़ी कमाल की आपने बात की। आज मैं सनाउल्ला बलोच से मेरी बात हुई और मैंने उनसे सवाल किया कि आप मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी रहे, नेशनल पार्लियामेंट भी रहे, आप सेनेटर भी रहे, और आज आप गिला करते हैं उस निजाम की खराबी का। क्या वजह है कि आप उस निजाम का हिस्सा थे, आपकी पोजीशन भी मुस्तहकिम थी, आज आपका क्लैन के लिहाज से भी यू आर स्टेबल, तो अगर आप गिला कर सकते हैं तो आम आदमी क्या करेगा? आप अम्बेसडर रहे, आपका प्रेसिडेंट के साथ, उन तमाम के साथ ताल्लुक रहा, व्हाट इज समथिंग दैट यू कुड नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द सिस्टम?
वो जो कहावत सुनी है ना तुमने अरफा के, एक चना पूरे भाड़ को कहां फोंक सकता है। तो मैं तनहा अपनी सतह पर इंफरादी कोशिश मेरी यही है कि मैं अपने माशरे की सोच को बदल सकूं। लेकिन हमारा मुकाबला असल में एक ऐसे निजाम से है जो पाकिस्तान की सरजमीन में इतनी गहरी जड़ें पकड़ चुका है कि अब उसको जड़ों से उखेड़ना एक जिहाद के मुतरादिफ होगा, एक जिहाद के बराबर है। और मैं इमरान खान की जो तारीफ करता हूं वो इसीलिए, उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, उसने अपनी सियासी
दुनिया छोड़ दी, उसने पाकिस्तान को प्रेफर किया टू लिव इन पाकिस्तान,
उसने अपनी सियासी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन वो सियासत में आया है एक मिशन लेके, एक मकसद लेके, और मकसद ये है कि पाकिस्तान की सियासत को गिलाजत से, करप्शन से पाक कर दिया जाए। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने शायद किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था,
उनको इतना ड्रंक कर दिया गया था कि जब वो ताकत में आए थे ना तो आई डोंट नो क्या कर दिया था। हालांकि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है और जिस तरह वो चैलेंजेस दे सकते हैं, उनको चाहिए था कि वो रिजाइन कर देते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं हूं, ना मुझे कोई फैसला करने की अहलियत है, आप मेरे इर्द गिर्द जिन लोगों को अपॉइंट करते जा रहे हैं, आप अपनी मर्जी के लोगों, तो मेरा ख्याल है सिस्टम ज्यादा बेहतर तौर पे एक्सपोज होता अगर वो ये कर लेते, तो
अगर वो ये कर लेते। और
तो इसका मतलब है कि वो तो फिर खुद भी फैन चढ़ गए अपनी ख्वाहिशात की,
कर लेना चाहिए था। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है आरफा, तुमने मौलाना अबुल आला मौदूदी का नाम तो सुना है
जी,
कि वो हमारे अहद के सबसे जय्यद आलिम दीन थे। उन्होंने जब अपनी सियासी पार्टी बनाई तो उनसे सवाल किया गया कि एक आलिम दीन क्यों सियासत के खारदार में कदम रखना चाहता है। और मौलाना का जवाब ये था, और मैं मौलाना के उस फैसले से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, उनका कहना ये था कि निजाम को बदलने के लिए ताकत जरूरी है, इख्तदार जरूरी है। इमरान खान के लिए भी عمران خان پر بھی یہی فکر یہی سوچ حاوی رہی ہے کہ اس کو اس نظام کو پاک کرنا ہے, اس کو کرپشن سے صاف کرنا ہے. اور صفائی کے لیے ظاہر ہے کہ کرسی ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ہم جیسے لوگ
بے اختیار کرسی پہ, تو آپ کو جو ان کے پاس کرسی تھی وہ تو ایبسولیوٹ بے اختیار کرسی تھی.
یہ تو اب ہمیں معلوم ہے نا, اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عمران کے پاس اقتدار برائے نام تھا, اختیار نہیں تھا.
کاش وہ تباہ کے ایئر پہ سپیچ کر دیتے,
یہ ہونا چاہیے تھا, یہ آئیڈیل صورت حال ہو,
آئیڈیل ہو جاتا,
آئیڈیل صورت حال.
میرے سر آپ سے یہاں پر ایک کوشچن آتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت کی صورت حال آپ کو جو نظر آ رہی ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آج میں اپنی آج کی آنکھوں دیکھی گفتگو, آنکھوں دیکھا حال اور کانوں سنی گفتگو پہ بیس کرتے ہوئے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بلوچستان کی اسمبلی میں, کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کی تعداد ساری 3.6% آف پاکستان پاپولیشن ہے, بلوچی افغانستان میں بھی ہے, بلوچی ایران میں بھی ہیں, بلوچی سندھ میں بھی ہے, 40% سندھ میں آباد ہیں. مگر جو یہ دہشت گردی کہا جاتا ہے کہ بلوچستان سے آتی ہے, مگر اگر بلوچستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس علاقے کے لیے؟
نہیں, ان کا یہ بیانیہ حقیقت پر مبنی ہے کہ بلوچوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے, ان کے
غصب کیا گیا,
ان کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے. میں یہ اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن درست ہے یہ بات کہ ان کے حقوق کو غصب کیا گیا اور ان پر اپنے نظام کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھو, پاکستان وفاق ہے, فیڈریشن ہے, اور فیڈریشن کی تعریف یہ ہے کہ فیڈریشن میں زیادہ اختیارات صوبوں کے پاس ہوتے ہیں, کم اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں. یہی وفاق کا حسن بتایا جاتا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں صوبوں کے حقوق تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ غصب کر دیے گئے, اور وفاق طاقتور سے طاقتور ہوتا رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست پر, پاکستان کی سیاست پر, پاکستان بنانے والے کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے فوج حاوی ہوتی گئی, فوج مسلط ہوتی گئی, اور فوج چونکہ مرکز کی ہے, لہذا مرکز کا اقتدار طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا اور صوبوں کے اختیارات کم سے کم ہوتے گئے. بلوچستان کے ساتھ تو صریحاً زیادتی ہوئی ہے. دیکھو, بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے, لیکن رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے. اگر بلوچستان کے معدنی وسائل کو, قدرتی وسائل کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا جس طرح سے استعمال کرنا لازمی تھا, ضروری تھا, تو بلوچوں کے ہاں یہ احساس سے کمتری پیدا نہ ہوتا, ان کو یہ احساس محرومی نہ پیدا ہوتا. مثال کے طور پر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جب 1970 کے عشرے میں کویت میں اپنے سفارت خانے کا کاؤنسلر تھا, 78 میں میں گیا تھا وہاں اور 81 تک میں وہاں رہا تھا. اس دوران کویتی بار بار ہم سے یہ فرمائش کرتے رہے کہ بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے, اتنی زمین ہے وہاں پر, لیکن پانی کی کمی ہے, بلوچستان میں میٹھے پانی کی کمی ہے. कुवैतियों का कहना ये था कि वो अपने खर्चे पर अपने तौर पर नहीं समंदर के पानी को मीठा करने का प्लांट लगाएंगे। देखो कुवैत और दूसरे खलीजी ममालिक में मीठा पानी कैसे हासिल किया जाता, उन्होंने डीसैलिनेशन प्लांट लगाए हुए हैं। डीसैलिनेशन प्लांट का से एक तो आपको समर ये मिलता है
नमक बना सकते हैं
कि समंदर का पानी मीठा हो जाता है, नहीं उसका जो रन डाउन बेनिफिट है वो ये कि आपको सस्ती बिजली मुहैया हो जाती है। सस्ती बिजली, कुवैतियों का ये कहना था कि हम बलूचिस्तान में डीसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे और उसके पानी से जमीन पर चरागाहें बनाएंगे ताकि वहां मवेशी पाले जा सके। कुवैत और दूसरे खलीजी ममालिक, तुम्हें मालूम है कि गोश्त खाने के बहुत शौकीन है और वो भेड़ें मंगवाते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। तो मेरे कुवैती दोस्त मुझसे यही कहा करते थे कि देखो हम हजारों मील की दूरी से जहाजों पर जानवर मंगवाते हैं,
यहां से मंगवा लेंगे।
अब अगर बलूचिस्तान में चरागाहें होंगी तो बलूचिस्तान तो हमसे मिला हुआ है।
मगर फिर आपने इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया?
मैंने एग्जीक्यूशन मेरे हाथ में नहीं था,
मगर
मेरे
हाथ में तो सकते थे।
मेरे हाथ में तो ये तजवीज पेश करना था और मैं बार बार करता रहा, बार बार हुकूमत को ये तजवीज कुवैतियों की पेश करता रहा कि
रिफ्यूज क्यों करते थे वो?
रिफ्यूज वेस्टेड इंटरेस्ट।
व्हाट वाज द वेस्टेड इंटरेस्ट?
इसलिए कि बलूचिस्तान को वो अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे और बलूचिस्तान के साथ हमने अवाम के साथ ये ज्यादती की कि हमने उनका सरदारी निजाम जूं का तू रहने दिया और सरदारी निजाम बलूचिस्तान का इस्तेसाल पर मबनी है। मैंने शायद के किसी पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि बर्तानिया की एक सहाफी थी सिल्विया नॉरिस, वो आके नवाब अकबर बुगती के डेरे में 1.5-2 बरस रही थी और उसके बाद उसने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात पर अपनी एक किताब लिखी है जो पढ़ने के काबिल है। उस किताब का उनवान है टाइगर्स ऑफ बलूचिस्तान। उस किताब को पढ़ने के बाद मेरी तो आंखें रोशन हो गई थी, मेरी समझ में आया था कि बलूचिस्तान का कबायली निजाम, सरदारी निजाम किस कदर इस्तेसाली है। तो हमारे तो जो बाइख्तियार हलके हैं, जो जिनके पास ताकत है, वो बजोर अपनी ताकत को मनवाते रहे हैं और आज भी मनवाना चाहते हैं। ये सारा ये पाकिस्तान में जो इंतशार हमें नजर आता है, ये जो बेचैनी नजर आती है, ये जो इस्तराब नजर आता है, इसकी इस वाहिद वजह ये है कि वो जिनके पास इख्तदार है वो अपने ताकत के बलबूते पर अपने इख्तियार को मनवाना चाहते हैं, हालांकि देख चुके हैं कि इस ताकत के इस्तेमाल का बेजा इस्तेमाल किस तरह से पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने पर मुंतज हुआ।
बहुत शुक्रिया। मैं सर आपने मुख्तलिफ चीजों का ऑलरेडी तस्करा कर चुके हैं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा और जिसको डिसक्वालीफाई करना होता है जबरदस्ती उसको, वो क्या प्रोफेसर का क्या चक्कर शुरू हो गया? अगर आप वजाहत
वो तो मैं यानी जब से मैंने वो पढ़ा है
सर, केस हमारे साथ शेयर करें,
इंतहाई रंज हो रहा है कि मेरी जामिया, मेरी कराची यूनिवर्सिटी जिससे मैं फारिग तहसील हुआ हूँ, उसका ये आलम हो गया है कि वो अब जर्नेलों के कहने पर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की वकालत की डिग्री को मंसूख कर देती है ये इल्जाम लगाकर के अनफेयर मींस इस्तेमाल किए गए। जज का नाम है तारिक जहांगीरी और इसके लिए
मगर आपको पता